जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोद नंदन ब्रज जन रंजन। यशोद नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोद नंदन ब्रज जन रंजन। यशोद नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्र। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नितय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज त्रिभा महामहोत्सव की जय। जय गौर प्रमाणंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्ष में आपका स्वागत है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के त्रिभाव दिवस के अवसर पर हम एक चैतन्य चरितमृत श्लोक का पाठ करेंगे। मध्य लीला अध्याय एक श्लोक क्रमांक 71। स्वरूपे पूछे न प्रभु होई अविस्मित, मोर मने कथा रूप जानी लके मते। स्वरूपे पूछे न प्रभु होई अविस्मित, मोर मने कथा रूप जानी लके मते। स्वरूपे पूछे न प्रभु होई अविस्मित, मोर मनेर कथा रूप जानी लके मते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमती जुगांगेस अवैचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। स्वरूप गोसाई को अत्यंत आश्चर्य के साथ वह श्लोक दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि रूप गोस्वामी किस तरह उनके मन के भाव को समझ सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते, हमें भी इसी प्रकार का आशीर्वाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से तब प्राप्त करने का सुअवसर मिला जब हमने उनकी वर्षगांठ पर एक लेख भेंट किया था। वे इस लेख से इतने प्रसन्न थे कि अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को बुलाकर उन्हें यह लेख दिखलाया करते थे। आखिर हमने श्रील प्रभुपाद के मनोभावों को किस तरह समझा होगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपावदये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित वैष्णवगण और जो साक्षात रूप से उपस्थित नहीं है लेकिन FM के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद मुझे दें, जैसे कि मैं कुछ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के गुणगान में बोलने का प्रयास कर सकूं। जितना कठिन भगवान का गुणगान करना है उससे भी अधिक कठिन भगवान के भक्तों का गुणगान करना। और जिस तरह भगवान के गुणगान की कोई सीमा नहीं होती है, वो एक आकाश के साथ या सागर के साथ इसकी तुलना की जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार से जो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के परिकर हैं, उनकी भी जो महिमा है, उनकी उनका जो गुणगान है उसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन इस छोटे से सत्र में हम किस प्रकार से शीला प्रभुपाद का उनके गुरु महाराज के साथ संबंध था और शीला प्रभुपाद किस प्रकार से उनका गुणगान किया करते थे अनेक समय पर, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर 11 बजे के बाद श्रीमान नाम प्रभु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुण और उनका उनके शिष्यों के साथ संबंध, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये श्री चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला का पहला अध्याय है जिसमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। और इन लीलाओं में श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट करने के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भाग लेते हुए चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का गान कर रहे थे। और जो श्लोक एक साधारण जो गीत है उसके जैसा प्रतीत होता था, उसको समझकर श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक की रचना की और उसको एक ताम्र पत्र पर लिखकर हरिदास ठाकुर के झोंपड़ी में जहाँ वो रहते थे वहाँ की छत में उसको लगा दिया। और उसके बाद वे स्नान करने के लिए समुद्र में चले गए, समुद्र में स्नान करने के लिए चले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय वहाँ पर आए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दैनिक नियम था कि जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के फिर हरिदास ठाकुर जी के जो भी उनका रहने का स्थान था वहाँ था और स्वयं उनको प्रसाद प्रदान करते थे। तो उन्होंने वो जो एक पत्ता देखा और उस श्लोक का अर्थ पढ़ा तो इतने विस्मित हो गए कि इस श्लोक का अर्थ तो कोई समझ नहीं पाया जब मैं गा रहा था, रूप गोस्वामी पाद ने इसको कैसे समझा। तो बाद में फिर रूप गोस्वामी का गुणगान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को लेकर वहाँ आते हैं और रूप गोस्वामी को सबसे परिचित कराते हैं। तो उस समय ये श्लोक बोल करके चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, स्वरूप एरा पूछे न प्रभु हो या विस्मित, विस्मित होकर के स्वरूप गोस्वामी को पूछते हैं कि मोर मने रे कथा रूप जाने लगे मत, ये जो रूप गोस्वामी है ये मेरे मन की कथा को किस प्रकार जाने, मेरे मन में क्या चल। इसीलिए जो रूप गोस्वामी पाद का जो प्रणाम मंत्र है उसमें कहा जाता है श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये अनुभूति। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को, मन की गहरी इच्छा को जान करके उसको पूरे पृथ्वी पर उन्होंने स्थापित किया, स्थापितम ये अनुभूति। तो फिर सौरभ गोस्वामी बाद में उसका उत्तर देते हैं कि आपने ही स्वयं उनके हृदय में जाकर उनको प्रेरणा दी है, आप उनके हृदय में प्रवेश किए, इसीलिए वे आपके मनोविष्ट को जान सके। तो इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही एक भावनात्मक तात्पर्य लिखते हैं कि हमें भी इसी प्रकार का आशीर्वाद हमारे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से प्राप्त है। अब अधिकतर नम्रता का गुण है कि वैष्णवगढ़ अपना गुणगान या अपने बारे में स्वयं नहीं बताते, लेकिन जब महान वैष्णवगढ़ अपने बारे में बताते हैं तो इसलिए बताते हैं कि जिससे कि किस प्रकार उन्हें गुरु की और वैष्णवों की कृपा प्राप्त की है, हुई है, उस कृपा का गुणगान कर सके। अपना गुणगान नहीं, उस कृपा का और उन भक्तों से जिनसे कृपा प्राप्त की है उनके गुणगान के लिए उनको बताते हैं। तो रूपा जी कहते हैं कि इस प्रकार का आशीर्वाद हमें भी मिला जब हमने उनकी वर्षगांठ पर एक लेख भेंट किया था। वो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश में लिखी गई कविता है, एडोर एडोर यू ऑल। उस कविता में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का गुणगान करते हैं, और ये कविता फिर उस समय जो पत्रिका छपती थी हारमोनिस्ट, उसमें छपने के लिए भेज देते हैं। तो हालांकि प्रभुपाद जी ने ये लेख सीधे सीधे भेंट नहीं किया था या उनके सामने नहीं पढ़ा था, दूसरे ग्वाड़िया मठ में जब व्यास पूजा थी उस समय पढ़ा था। जब ये लेख और ये कविता उनको मिली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, और उसका जो विशेष रूप से एक लाइन था, एब्सोल्यूट सेंशन दाव हैज प्रूव्ड इम्पर्सन कैलामिटी दाव हैज रिमूव्ड, कि जो परम सत्य है वो एक व्यक्ति है, इस बात की स्थापना की है आपने, और जो बहुत बड़ी भयंकर स्थिति थी, जो बहुत बड़ी एब्सोल्यूट कैलामिटी मतलब बहुत भयानक स्थिति, भयावह स्थिति, उसको आपने दूर कर दिया। तो इसको पढ़ करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये अभय मेरे हृदय को जानता है, अभय ने मेरे हृदय को समझ लिया है, और इसलिए अभी जो भी वो लिखते हैं उसको आप तुरंत प्रकाशित कर सकते हैं, तुरंत उसको छाप सकते हैं बिना एडिटिंग के, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं देखते थे लेख को और एडिट करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके गुरु ने उनको पहचाना। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते नहीं, इसको एक प्रश्न के रूप में इसका समाप्ति करते हैं। कहते हैं कि आखिर हमने श्रील प्रभुपाद के मनोभावों को किस तरह समझा होगा, ऐसा कुछ उत्तर नहीं देते हैं। कभी भी कोई लेख होता है या कुछ होता है तो प्रश्न से शुरू करते हैं, उत्तर पर अंत करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी एक प्रश्न के रूप में उसका समापन करते हैं कि हमने किस प्रकार समझा होगा। तो किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति सरस्वती महाराज के मनोभाव को समझा, ये हमारे लिए भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना श्रील प्रभुपाद जी के मनोभाव को समझे, बिना हमारे जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु उनके मनोभाव को समझे बिना हम भक्ति में अधिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति का जो मार्ग है वो हमारे खुद की दृढ़ता, खुद का ज्ञान, खुद की तपस्या इत्यादि नहीं है। इन मार्ग से व्यक्ति अलग, जो कर्मयोग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, इस पर प्रगति कर सकता है, लेकिन भक्ति योग में प्रगति करने के लिए कृपा सबसे प्रबल है, और कृपा प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के मनोभाव को जानना आवश्यक है, अन्यथा कृपा कैसे प्राप्त होगी। कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नागति। तो अगर उनको प्रसन्न करना है तो उनके मनोभाव को जानकर उनके मनोभाव के अनुरूप जब कार्य करेंगे तब वे प्रसन्न होंगे, और उनके प्रसन्न होने पर हमको उनकी कृपा प्राप्त होगी, और कृपा प्राप्त होने के बाद हमको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। आध्यात्मिक उन्नति का भी अर्थ है कि भौतिक चीजों से विरक्ति और भगवान और भगवान से संबंधित जो तदीय है उनसे आसक्ति, और ये व्यक्ति अपनी क्षमता से अपने बल से नहीं कर सकता है, ये केवल कृपा के वश जब भक्तों की कृपा आती है, गुरु की कृपा आती है, उस कृपा से ये भौतिक विरक्ति और आध्यात्मिक आसक्ति संभव है, अन्यथा अपने किसी भी प्रयास से संभव नहीं है। तो किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने उनके गुरु के मनोभाव को समझा, इसके ऊपर हमें बहुत मनन करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था की स्थापना की है और इस्कॉन में जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ किया है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की प्रसन्नता है। पूरी इस्कॉन संस्था, पूरी बीबीटी भक्तिवंत बुक ट्रस्ट, उसका केवल एक ही उद्देश्य है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दिए गए आदेश को पूरा करना और उनको प्रसन्नता प्राप्त करना। और इसीलिए हम जो भी इस्कॉन में करते हैं, अभी तो पुस्तक वितरण का महीना है तो इतने सारे ग्रंथ वितरण करते हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी को उनकी गुरु की सेवा करने में सहायता करना है, और कोई उसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारा कुछ भी उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अनेक अवसर पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बताते थे, और प्राय बताते बताते वे एकदम विचलित हो जाते थे और रोने लगते थे, क्योंकि इतना गाढ़ प्रेम था, इतना गाढ़ा संबंध था कि उनकी कृपा को, उनकी दया को याद करके वे विलाप करने लगते थे। आप अभी भी टेप में सुन सकते हैं, 1968 में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, 1973 में दिया, 1975 में दिया, तीन बार तो लेक्चर दिया, और उसके अतिरिक्त तो प्राय वे अपने जो प्रवचन थे उसमें भी उनके गुरु के बारे में कोट करते थे। तो प्रभुपाद जी ने गुरु निष्ठा क्या है और गुरु निष्ठ भक्त का क्या स्वभाव होता है, इसका बहुत ही विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, वो हम वेदों का अध्ययन करके, कुछ योग तपस्या इत्यादि कर्मकांड करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, प्रेमो पुमर्थो महान, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए गुरु निष्ठा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु निष्ठा के ऊपर अतिरिक्त एक बहुत विशेष बल दिया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। आप किसी भी अन्य मंदिर में जाएंगे, किसी भी अन्य संस्था में जाएंगे, तो जब भगवान का दर्शन खुलता है, मंगल आरती इत्यादि होती है, तो उनका गुणगान होता है। आप बालाजी में जाएंगे तो ये क्या है, सुप्रभातम और विष्णु सहस्त्र नाम, इसका पाठ होता है। तो इस प्रकार से जब भगवान का दर्शन होता है, भगवान की आरती होती है, तो भगवान का गुणगान होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जान करके कि भगवान की कृपा का एकमात्र मार्ग गुरु की कृपा है, इसलिए मंगल आरती के समय से ही गुरु का गुणगान शुरू हो जाता है। तो मंगल आरती में गुरु का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर जप के बाद गुरु पूजा करते हैं, और किसी भी संस्था में, किसी भी पंथ में गुरु की इस प्रकार की पूजा प्रतिदिन नहीं की जाती। लेकिन प्रभुपाद जी समझे कि इस कलयुग के जीवों के लिए भगवान की कृपा मिलने के जो अवसर है वो बहुत कम है, आसार कम है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त की पूजा अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब उनके माध्यम से उनको कृपा प्राप्त हो सकती है। तो भगवान की कृपा हमारा अवलंबन नहीं है, भगवान की कृपा हमारी आशा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा हमारी आशा है। अगर भगवान की कृपा किन भक्तों को मिलती है, उन भक्तों की क्या योग्यता होती है, इसका शास्त्रों में वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे, तो हम समझेंगे कि हमारी योग्यता ही नहीं, हम योग्य बनने से बहुत करोड़ों मील दूर है। लेकिन क्योंकि वैष्णव की कृपा, वैष्णव की तुलना एक बादल से की जाती है, क्योंकि बादल सूर्य के रोशनी से समुद्र के जल को वाष्प बनाकर बादल बनता है, और बादल लोगों तक आता है। अगर समुद्र तक जाना है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, यहां से ट्रेन लेकर के बॉम्बे जाना पड़ेगा अगर अरेबियन सी में जाना है तो, या कलकत्ता जाना पड़ेगा अगर बे ऑफ बंगाल में जाना है, या रामेश्वरम जाना पड़ेगा, हमको समुद्र तक जाना पड़ेगा, समुद्र हम तक नहीं आएगा। लेकिन उसी समुद्र का जल एक ऐसे रूप में जिसको सीधे सीधे व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, समुद्र के जल को सीधे सीधे ग्रहण भी नहीं कर सकते, खारा होता है, तो ऐसे जल, ऐसा समुद्र के जल को बादल बनाकर वो बादल व्यक्तियों तक पहुंचता है। पूरे भारत भर में, विश्व में बादल आते हैं हवा के प्रवाह से और वहां पर बारिश करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास हमको करना पड़ता है, लेकिन गुरु कृपा, वैष्णव कृपा ऐसी होती है कि जो बद्ध जीवों के जीवन में स्वतः ही आ जाती है, उनकी करुणावश। रूपा जी को किसी ने इनवाइट नहीं किया था, किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था कि आप यहां पर आइए और यहां पर हिप्पी है, इनका उद्धार कीजिए, ऐसा किसी ने आमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। लेकिन उनके गुरु की करुणा को समझकर वे 70 वर्ष की आयु में इतना कठिनता से पानी के जहाज में बैठ करके वहां पर गए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मनोभाव को पूर्णतया समझा है, और उसी मनोभाव को इस्कॉन के माध्यम से प्रस्थापित किया है, और उसको अगर हम समझेंगे तो हमारा भी जो जीवन है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कभी कभी भक्त बनने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता बोली क्योंकि अर्जुन कन्फ्यूज थे, अर्जुन को समझ नहीं रहा था कि क्या करना है, युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं करने के भी कारण है, करने के भी कारण है, दोनों के कारण है। तो रूपा जी लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी सक्षम हो, लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए, परप्लेक्स हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मेरा कर्तव्य क्या है समझ नहीं पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गुरु स्वीकार किया है, जिसने भगवान की शिक्षा प्राप्त की है, भगवद गीता पढ़ी है, उसको इस प्रकार से परप्लेक्स या कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हमको हमारे स्थिति ठीक प्रकार से बनाने के लिए, इस्कॉन में रहकर ठीक प्रकार से भक्ति करने के लिए, इस्कॉन की जो नींव है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो मूड था जिसको प्रभुपाद जी ने आगे किया, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा वर्णन करते हैं किस प्रकार से जब उनके मित्र नरेंद्र मलिक ने उनको कहा कि आप एक साधु के पास चलिए उनसे मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी पहले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका अनुभव साधुओं के साथ ऐसा रहा था कि जो लोग निकम्मे हैं, जो लोग कुछ कर नहीं सकते, वे लोग साधु का वेश पहन करके भिक्षा मांगते हैं, और इस प्रकार से जो साधु वर्ग है उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे मित्र भी मुझे अपना जो ग्रुप था, जो संघ था, उसका एक नेता जैसा मानते थे, लीडर मानते थे, और जब तक कि मैं नहीं कहता था कि ठीक है, जब तक भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी स्वयं से ही शुरू से ही एक प्रकार के नेता रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जी गांधी जी के मिशन से बहुत प्रभावित थे, और गांधी जी के मिशन से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, डिग्री प्राप्त नहीं की थी, और खादी वस्त्र धारण करते थे। उस समय खादी पहनना एक झंडे के समान था, जो वो दिखाता था कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं दे रहे, हम अंग्रेजों के विरुद्ध हैं। ये केवल एक फैशन नहीं था कॉटन पहनना, खादी पहनना। तो इस प्रकार से खादी पहनते थे और गांधी जी के मिशन में सम्मिलित हुए थे, और बोस लेबोरेटरीज में एक मैनेजर के रूप में सेवा कर रहे थे। उनका विवाह हो गया था, उनकी 26 साल उम्र थी, और एक छोटा बेटा भी था उनको। तो इस प्रकार से उनके मित्र ने उनको आग्रह किया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं पहले जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। तो उल्टा डांगा जंक्शन पर छत पर उनको लेकर के गए, जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रवचन दे रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा इस्कॉन के लिए हर्ष की बात है, सौभाग्य है कि इसी वर्ष जो एक वन उल्टा डांगा जंक्शन, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी की भेंट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से हुई, वो जगह इस साल इस्कॉन ने प्राप्त किया, और अभी थोड़े समय में वहां पर रिनोवेशन करके वहां पर जैसा पहले था उसके जैसा बनाएंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि वो जगह है ऐसी जहां पर कि इस्कॉन और भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट की नींव डाली गई थी, वहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो वो जगह इस साल इस्कॉन को प्राप्त हुई है, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है। और अभी इस्कॉन कलकत्ता की ओर से भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं उसको रिनोवेट करने के लिए। तो जाने के बाद उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही तुरंत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते हैं, प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि पहली बार भेंट हुई, अभी तक तो कुछ वार्तालाप भी नहीं हुआ, नाम इत्यादि परिचय भी नहीं हुआ, और सब कुछ करने से पहले आदेश मिला। तो श्रील भक्ति सरस्वती महाराज तुरंत भक्तों को एम्पावर करते थे, तुरंत शक्ति प्रदान करते थे प्रचार करने के लिए। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और भक्तों को तुरंत बोलते थे आप उस देश में जाकर के सेंटर खोलिए, आप उस देश में जाकर के प्रचार कीजिए, ज्यादा समय इंतजार नहीं करते थे। तो ये जो प्रचार कार्य का जो भाव है, ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एकदम उनका एक प्रकार का एक पहचान है, वो सिम्म गुरु है। उन्होंने जितना महाप्रभु के मिशन का और रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, वो बहुत ही सराहनीय है। तो प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, और ये 1922 की बात है। 1922 में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वो चल रहा था, गांधी जी भी अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे थे, पूरे भारत में केवल एक ही चर्चा थी, हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए कई कई प्रकार के कार्य चल रहे थे। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था, और उसके बाद और सुभाष चंद्र बोस भी अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे। तो पूरी जो राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति थी उसमें केवल एक ही चर्चा थी, हमको स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, और कोई चीज किसी व्यक्ति के मन में और हृदय में नहीं थी। तो इस
तरह का माहौल था। देखिए अभी तो इलेक्शन होता है, कुछ होता है, तो थोड़े समय के लिए लोग एक आवेश में आ जाते हैं कि कौन सी सरकार बनने वाली है। यहाँ तक कि भक्त लोग भी जानना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट लैब पर जाकर के देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनको अवगत रहना चाहिए। हाँ, केंद्रीय सरकार कौन सी बन रही है और महाराष्ट्र सरकार कौन सी बन रही है, इतनी हमको कभी कभी रुचि रहती है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि 1922 है, भारत स्वतंत्र नहीं है, अंग्रेजों का राज्य है, और अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, और हर भारतीय किसी न किसी तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहा है। और उस समय पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि आप चैतन्य महापुरुष की शिक्षाओं का प्रचार कीजिए। तो तुरंत शिला प्रभुपाद जी ने जो उनका ऐतिहासिक प्रश्न है वो पूछा। ये प्रश्न को जानना, उसको समझना गहराई में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद जी के उनके गुरु के साथ कुछ ही बार भेंट हुई है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं मैं 5-6 बार अपने गुरु से मिला, कई कुछ बार बोलते हैं 10-12 बार मिला, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिले। उस 10-12 भेंट में या 5-6 भेंट में प्रभुपाद जी ने जो संघ प्राप्त किया और जो मनोभाव को समझा, उससे हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि गुरु के साथ हमको चिपके रहना है, उनके साथ ही रहना है और व्यक्तिगत सेवा ही होना चाहिए, तभी हम गुरु के आदेश को, उनके निर्देश को, उनके मिशन को समझ सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। शीला ये जो भक्तिधीर दामोदर स्वामी महाराज है, उनका जो पुस्तक है स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसमें वो लिखते हैं कि गुरु को चाहिए कि कम से कम एक ऐसे शिष्य का चुनाव करे, एक ऐसा शिष्य बनाए जो उसके मिशन को, जो उनके हृदय को पूरी तरह समझ सके। इसका अर्थ है कि हजारों शिष्य होने के बाद भी उनमें से कोई शिष्य गुरु के आंदोलन को और मिशन को समझा है, ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि बद्ध जीव बहुत बद्ध होता है, बद्ध जीव गुरु का भोग करना चाहता है, भगवान का भोग करना चाहता है, उनके द्वारा दी गई सुविधाओं का भोग करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता। हर जगह पर उसकी जो मनोभावना है कि इसमें मेरे लिए क्या है, गुरु की सेवा करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, भगवान की सेवा करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, तो ये जो भावना है ये बहुत गहरी भावना है, ये तुरंत नहीं निकलती। व्यक्ति गुरु से भी तुरंत नहीं बनता है, गुरु भोगी बनता है, और गुरु का उपयोग करना चाहता है, भगवान का उपयोग करना चाहता है, उनके द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करना चाहता है अपने आनंद के लिए। तो भक्ति सरस्वती महाराज इसका बहुत ही खंडन करते थे। तो हालांकि इतने सारे शिष्य थे जिनको व्यक्ति का संघ प्राप्त था, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए ऐसा कहा, हमारे जो प्रभुपाद जी अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी, उनके लिए कहा कि इन्होंने मेरे हृदय को समझा है, बाकी लोगों के लिए नहीं कहा। तो हृदय को समझने के लिए व्यक्तिगत संग या पास में रहना, निकट रहना, ये आवश्यक नहीं है, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा भक्ति सरस्वती महाराज को कि अभी हम अधीन देश है, पहले हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद फिर हम भक्ति का प्रचार करेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेंगे। और इसका जो उत्तर श्री प्रभुपाद जी ने या भक्ति सरस्वती दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है कि इस्कॉन के भक्त भी बहुत सारी चीज़ों में रुचि लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से विचलित होते हैं, अरे जिहाद हो रहा है इसका क्या होगा, और ये जो मुस्लिम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा, क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है उसका क्या होगा, और हमारी सरकार बदल जाएगी उसका क्या होगा। लेकिन इस उत्तर में हम पाते हैं कि 1922 की घटना है, ये प्रभुपाद जी की पहली भेंट है उनके गुरु से, और उनके गुरु कहते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इससे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक स्थिति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामाजिक स्थिति सदैव ही बदलती रहेगी, जो राजनीति है वो रहेगी, राजनीति के बदलते रहेंगे, एक शेर जाएगा तो एक चीता आ जाएगा, चीता जाएगा फिर से शेर आ जाएगा, लेकिन इन चीजों से व्यक्ति की जो आध्यात्मिक स्थिति है, व्यक्ति जो वास्तव में भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना उसका कर्तव्य है, उस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन स्थिति को छोड़कर जो व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति है, भगवान की सेवा करना, भगवान का निरंतर दास के रूप में रहना, उस स्थिति को समझना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। और ये अर्जेंसी है, ये क्या है, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, इसके लिए किसी प्रकार का हम देर नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे परास्त कर दिया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और फिर वापस आकर प्रभुपाद जी ने उनके मित्र से कहा कि ये बहुत ही साधु पुरुष हैं और जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी समय पर मैंने उनको अपने हृदय में गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। ये 1922 की बात है, प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई थी उनके गुरु से 1933 में, 11 साल के बाद। हम लोग तो 3-4-5 साल हो जाए तो बहुत विचलित हो जाते हैं। 11 साल के बाद प्रभुपाद जी ने उनसे दीक्षा पाई। तो इस प्रकार से जो पहला संवाद हुआ उससे हमको समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है इसका दुनिया की स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि उसका हम उपयोग कर सकते हैं अनुकूल रूप से और उसमें प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये महाप्रभु का मिशन बाहरी स्थिति पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं है। जितनी हमारे अंदर शुद्धता है उस अनुपात में हम प्रचार कर पाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उस समय पर इतना प्रचार किया, इतने युवा वर्ग के लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ा कि सुभाष चंद्र बोस, रूपा जी कोट करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गौड़िया मठ में आए उनको मिलने के लिए और कहने लगे कि पूरे भारत भर के जो युवा लोग हैं उनको आपने आपके आंदोलन से जोड़ लिया है और मेरे पास स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए लोग नहीं है। तो आप सोचिए कि श्रील भक्ति सरस्वती महाराज के प्रचार का क्या एक प्रभाव रहा होगा उस समय पर। तो श्रील भक्ति सरस्वती महाराज उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे, तो कहने लगे कि ये बहुत ही दुर्बल दुबले पतले लोग हैं, इनको यहाँ रह करके कुछ सेवा और प्रसाद ग्रहण करने दीजिए, आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हट्टे कट्टे लोग चाहिए, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए बाकी लोगों को। लेकिन सोचिए आपकी कितना उनका प्रभाव रहा होगा उस समय पर, जबकि मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम स्वतंत्र होकर रहेंगे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के स्लोगन को सुनकर हम लोग भी भक्ति में आने से पहले हम लोग भी एकदम प्रभावित हो जाते थे। सोचिए उस समय पर इतना प्रचार किया। इसलिए प्रचार के लिए कोई बाहरी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता है अगर हमारे अंदर शुद्धता है, अगर हमारे अंदर गुरु निष्ठा है, अगर हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आदेश में अगर हमको श्रद्धा है तो बाहरी परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा नहीं है तो फिर हजार कारण हो सकते हैं प्रचार नहीं करने के लिए। उसके बाद प्रभुपाद जी फिर 1923 में प्रभुपाद जी इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए प्रयाग राज में और वहाँ पर प्रयाग फार्मेसी नाम से अपनी जो दवाई की दुकान थी वो खोली और थोड़े समय के बाद वहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी ने उन शिष्यों को पूरी तरह से मदद किया और उनको फंड रेजिंग में और मंदिर बनाने के लिए पूरा सहयोग किया। तो 1932 में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के लिए वृंदावन गए जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज करीब करीब 20,000 लोगों का वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे। हम लोग 2-3-4 हज़ार होते हैं तो सोचे 20,000 लोग हैं और उस परिक्रमा में हाथी थे, घोड़े थे, ऊंट थे और हर चीज़ के दो सेट होते थे क्योंकि एक दिन परिक्रमा रुकती थी एक जगह पर और अगले दिन वो एडवांस पार्टी जाकर के वहाँ इंतजाम करते थे। तो इतना बड़ा आयोजन था, 20,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, आप सोचिए क्या आयोजन रहा होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रचार किस प्रकार से पूरे भारत पर प्रभाव किया इसको समझने के लिए भक्ति सिद्धांत वैभव हमको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। हम लोग आजकल के थोड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, कभी कभी क्रिकेट स्टार से प्रभावित होते हैं, बॉलीवुड स्टार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे जो सूर्य के समान चमकने वाले, प्रकाश देने वाले, अंधकार को दूर करने वाले जो हमारे गुरु वर्ग के आचार्य हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं, हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा है, इसलिए उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारे आचार्यों के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है जिससे पता चले कि हम किस परंपरा में आ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सिम्म गुरु कहा जाता था, इतना जोर से प्रचार करते थे और इतना लोगों को प्रभावित किया। और उनका सबसे बड़ा योगदान प्रभुपाद जी कहते हैं उनके जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उसमें लिखते हैं कि सबसे बड़ा उनका योगदान था कि उन्होंने जो जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम था, जाति वर्ग का जो प्रभाव था उसका समापन किया। लेकिन आज हम उससे पीड़ित नहीं है तो हमको उसका अंदाजा नहीं होता है कि उस समय पर जो जो कास्ट ब्राह्मण थे या स्मार्त ब्राह्मण थे उनका क्या प्रभाव था और भक्ति सरस्वती महाराज ने किस प्रकार से उनका विरोध किया और उनका विरोध करने के लिए किस प्रकार से जो ये जो कास्ट ब्राह्मण इत्यादि लोग थे उन्होंने किस प्रकार से उनका प्रतिशोध किया। तो इसको समझने के लिए उस समय की सामाजिक स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से महाप्रभु का जो संदेश था पूरे तरह से लुप्त हो गया था और उस संदेश के गलत जो प्रतिनिधि थे वो पूरी जगह व्याप्त थे, पूरे वृंदावन में और पूरे नवद्वीप में केवल बाबा जी व्याप्त थे जो कि महाप्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं थे। ये 13 जो आप संप्रदाय थे पूरी तरह से प्रभावित थे और शुद्ध गौड़िया वैष्णव को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इतना तक कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक चैतन्य चरितामृत की एक प्रति प्राप्त करने के लिए, कॉपी प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग गए और जब उन्होंने समझा कि चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर और इतना प्रगाढ़ सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत को भूल करके आप संप्रदाय ने उनको पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा बर्बाद कर दिया, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ प्रयास किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखे और बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे नाम हट्टे इत्यादि चालू किए महाप्रभु के मिशन को फिर से फैलाने के लिए, फिर से उसको जागृत करने के लिए। और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की जगन्नाथपुरी में कि मैं अकेला ही सारा कार्य नहीं कर सकता, इतना बड़ा कार्य है, तो इसको साकार करने के लिए कृपया आपके ही एक पार्षद को यहां पर भेजिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव हुआ 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में। और प्रभुपाद जी बताते हैं उनके बचपन की घटनाएं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो एम्बेलिकल कॉर्ड होता वो उनके ऊपर एक ब्राह्मण थ्रेड के जैसा लगा हुआ था, और जब वे 6 महीने के थे तो जगन्नाथ की जो रथ था वो रथ 3 दिन तक उनके घर के सामने खड़ा रहा, 3 दिन तक हिला नहीं। तो 3रे दिन जब उनकी माता थी भगवती देवी उनको लेकर के रथ के ऊपर गई और वहां पर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो जगन्नाथ जी का एक हार उनके ऊपर गिर गया उसके बच्चे के ऊपर। तो उसको देख करके जो पुजारी थे पंडा थे बहुत हर्षित हो गए और बोले कि ये जगन्नाथ जी का प्रचार पूरे विश्वभर में करेगा, जगन्नाथ जी का विशेष भक्त। और भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए इस लक्षण को देख करके, यही वो महापुरुष हैं, यही वो विशेष भक्त हैं जिनको भगवान ने स्वयं भेजा है उनकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हालांकि भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन भौतिक जगत का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी हो, भगवान स्वयं भी हो या भगवान के पार्षद हो, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भक्त का स्वभाव है कि कठिनाइयों का सामना करते करते भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन भगवान को दोष नहीं देते कभी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी जब जलदूत से गए तो दोष नहीं दिया कि मैं आपका मिशन के लिए जा रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, केवल कृतज्ञता भक्त के हृदय में वास करती है। तो इस प्रकार से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना, इतना कि जो जाति के रूप से जो ब्राह्मण थे वृंदावन के लोग जाति गो से, इतने उनसे क्रुद्ध हो गए कि जो 7 मंदिर हैं गोस्वामी के उनको उनमें प्रवेश नहीं करने दिया, और कई जगह पर उनका जो ये यात्रा के लोग थे उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विरोध किया उनका और कितना ये स्ट्रांग था, कितना शक्तिशाली था जो कास्ट ब्राह्मण का जो सिस्टम था। और उसके बाद उनके पास एक पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आया, रूपा जी कहते हैं ये बात मेरे गुरु ने मुझे स्वयं बताई। तो ये ऑफिसर उनको मिलने के लिए आया और बोला कि देखिए हमारे पास ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये आए थे और बोले कि हम आपको 25,000 रुपये देंगे। ये कब की बात है, 1930 की बात है, 1930 में 25,000, देखिए 25,000 आज भी बहुत बड़ी मतलब धन माना जाता है, छोटा मोटा धन नहीं, आज भी 25,000, उस समय 25,000 मतलब समझिए कम से कम आज का 2-4 करोड़ रुपया रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। उस समय 25,000 रुपया देने के लिए राजी थे, किस लिए, कि हम इनकी हत्या कर देंगे और आप कुछ भी मत कीजिएगा, बस इसके लिए। तो पुलिस अफसर बोलने लगा कि हम लोग साधारण तौर पर ऐसा हम रिश्वत लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप साधु पुरुष हैं इसलिए हम ये कार्य नहीं करना चाहते, इसलिए आप सावधानी से रहिए। तो ये उनके प्रचार का प्रभाव था, इतना उनका विरोध किया जाति ब्राह्मणों ने कि उनको हत्या करने के लिए भी वे लोग तत्पर थे। उसके अतिरिक्त एक बार जब नवदीप परिक्रमा जब लेकर के जा रहे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तब भी कुछ लोग उनको हत्या करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए पकड़ना चाहते, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वेश बदल करके वहां से भागना पड़ा। तो देखिए ये नित्य सिद्ध परिकर है, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन किस प्रकार का कष्ट और किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमको अगर थोड़ी बहुत भी कठिनाई होती है तो हमको समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने इससे कहीं ज्यादा गुनी कठिनाई को सहा है, इसलिए आज हम हैं इस भक्ति के मार्ग पर। तो 1932 में जब श्रील प्रभुपाद जी मिले अपने गुरु महाराज से, तो वे कोशी में मिले वहां पर, और वहां पर ये घोषणा हुई कि आज हम कोशी में जो भगवान के विग्रह हैं शेषशायी विष्णु, वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे और यहाँ पर श्रील भक्ति सरस्वती महाराज अपना अंतिम प्रवचन करेंगे, इसके बाद वो जा रहे थे। तो 99% वक्त कहाँ गए दर्शन करने के लिए, क्यों, क्योंकि बद्ध जीव को लगता है कि देख करके बहुत प्राप्त होगा, मैंने देख लिया मतलब ग्रहण कर लिया, देख लिया मतलब समझ में आ गया, उसको अपने इंद्रियों पर बहुत विश्वास होता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं सोच रहा था कि मुझे देखने से क्या लाभ होगा, मैं तो मेरे गुरु से श्रवण करना चाहता। तो वे टेंट में प्रवचन दे रहे थे और केवल 12-15 भक्त थे और बाकी सब सन्यासी लोग थे या बहुत निकट के लोग थे। एक शिला प्रभुपाद जी उस समय ग्रस्त थे, तो वही एक अकेले एक अलग प्रकार के देखने वाले व्यक्ति थे। तो वो प्रवचन चलता रहा और 1 घंटे के बाद 2 लोग उठ गए, 2 घंटे के बाद और 4-6 लोग उठ गए। तो प्रवचन कई घंटों तक चलता रहा और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं सब चीज़ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना कभी बंगाली में, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में प्रवचन करते थे, इतना उच्च कोटि का प्रवचन था कि मुझे सब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे प्रसन्नता थी कि मुझे मेरे गुरु के मुख से श्रवण करने का अवसर मिला है। इसीलिए प्रभुपाद जी श्रवण पर इतना बल देते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं गुरु के मुख से श्रवण किया। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त देखो लिया, तो श्रवण किया और फिर वे वापस इलाहाबाद आ गए। और इलाहाबाद आने के बाद जो अतुलानंद ब्रह्मचारी वहाँ के लीडर थे, तो जब श्रील भक्तिचंद सरस्वती महाराज आए तो उन्होंने कहा कि ये अभय बाबू हैं और आप इनको दीक्षा प्रदान कीजिए। तो श्रील भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने कहा कि हाँ, मैं इनको पहचानता हूँ, मैं इनको अवश्य दीक्षा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से सुनते हैं। ही लाइक्स टू हियर, और क्योंकि ये ठीक प्रकार से सुनते हैं इसलिए भविष्य में ये बहुत सुंदर रूप से प्रचार कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी इस बात को भी बहुत बार कोट करते थे और कहते थे कि मेरे गुरु ने मुझे पहचाना किसके लिए, दान दक्षिणा देने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए नहीं, लेकिन सुनने के लिए। तो ये चीज श्रील भक्तिनंद सरस्वती महाराज ने नोट की, और क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके गुरु से ठीक प्रकार से सुना इसीलिए वो ठीक प्रकार से प्रचार कर पाए। और प्रचार का जो भी कार्य प्रभुपाद जी ने शुरू किया उसका पूरा श्रेय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को दिया। 1944 में श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू की। अभी सोचे 1944 का भी जो समय था वो ऐसा था कि 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था, दूसरा जो विश्व युद्ध था, वो भी लगभग उस समय समाप्त हुआ था। तो उस समय भी राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत अलग प्रकार की थी। उस समय पर प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक पत्र बैक टू गॉडहेड शुरू किया 1944 में, और उसका जो पहला अंश लिखा उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मेरे गुरु के आदेश अनुसार उनको सेवा करने के रूप में मैं यह पत्रिका निकाल रहा हूँ, और इस पत्रिका में मैं केवल उनके मत को प्रस्तुत करूंगा, मैं मेरा कुछ भी मत प्रस्तुत नहीं करूंगा, और उनके आशीर्वाद से ये पत्रिका के माध्यम से प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा। तो ये पत्रिका प्रभुपाद जी ने निकाली अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में, बैक टू गॉडहेड। और बाद में क्योंकि ये सब चल रहा था तो अंग्रेजों ने पेपर देना बंद कर दिया, पेपर चाहिए था, उस समय पेपर भी राशन से मिलता था, अभी के जैसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने जो उनको आवेदन पत्र लिखा उसमें भी ये लिखा कि मैं मेरे गुरु की आज्ञा को पूरी करने के लिए ये पत्रिका छाप रहा हूँ, इसलिए आप मुझे सहायता कीजिए और मेरे गुरु की आज्ञा पूरी करने का अवसर दीजिए। तो प्रभुपाद जी के लिए उनके गुरु की आज्ञा इतने निकटस्थ थी कि कभी प्रभुपाद जी उनके गुरु को या उनके आदेश को कभी भूले नहीं। प्रभुपाद जी ने स्वयं भी कहा, देयर नेवर अ टाइम व्हेन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद जी की जो गुरु निष्ठा थी उसके बल पर ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की नींव रखी। 1952 में प्रभुपाद जी ने जो ये श्रीमद् भागवतम का पहला जो स्कंध है उसका पहला भाग वो छापने का प्रयास किया, उसके ऊपर इंग्लिश में कमेंट्री लिख करके। तो पहला जो ये पहला स्कंध का पहला भाग है उसको भी श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रचार का जो भी कार्य प्रभुपाद जी ने किया उसके लिए पूरा श्रेय श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज को दिया। और प्रभुपाद जी जब जाना चाहते थे अमेरिका और उसके लिए फ्री टिकट के लिए सिंधिया स्टीमशिप की जो मालकिन थी सुमति मुरार जी उनके पास जब गए तो उनको भी बोलने लगे कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया 1922 में, अभी मैं कम से कम इस उम्र में उस आदेश का पालन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे इच्छा की थी कि मैं पाश्चात्य देशों में जाकर के प्रचार करूँ, तो आप मुझे मेरे गुरु की सेवा करने का अवसर दीजिए, उसमें सहायता कीजिए। प्रभुपाद जी ने कभी अपने को अपने गुरु की आज्ञा से और गुरु के मिशन से अलग करके नहीं देखा। फिर प्रभुपाद जी जब जलदूत पर जा रहे थे तो 17 सितंबर को प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका। 10 सितंबर को प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं राधा गोविंद देव और वृंदावन से बहुत विरह का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक ही आशा है कि मैं यहाँ पर मेरे गुरु के जो आदेश है उसके अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए आया। और उसके बाद उन्होंने वो फेमस कविता लिखी, कृष्णा तव पुण्य होवे भाई, जिसमें वो जो पूरा श्रेय है श्रील भक्ति सरस्वती महाराज को देते हैं और उनसे शक्ति की याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शक्ति दीजिए प्रचार करने। तो ये प्रभुपाद जी का भाव था कि हर स्थिति में, हर समय वो अपने आप को अपने गुरु से जोड़कर देखते थे। जितने भी व्यास पूजा हुई है, सारे व्यास पूजा एड्रेस में शिला प्रभुपाद जी ने सारा श्रेय, जो उन्होंने जो भी किया है, उसका सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को दिया है और अपने शिष्यों को कहा कि आप मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी और उस आज्ञा को पूरा करने का जब मैंने प्रयास किया तो उसमें सहायता करने के लिए मेरे गुरु महाराज ने व्यक्तिगत रूप से आप सभी को भेजा है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अपने गुरु के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे और प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो भी प्रचार कार्य संभव हुआ है, सफल हुआ है, उसका केवल एक ही कारण है कि मैंने मेरे गुरु से जो सुना है, जो संदेश प्राप्त किया है, उसको बिना कुछ परिवर्तन किए, बिना कुछ बदले यथारूप में उसको प्रस्तुत किया है, इसीलिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये केवल मेरे गुरु की कृपा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से जो गुरु निष्ठा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही विलक्षण है और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, व्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। हमारा जो दान का बल हो या तप हो या शिक्षण हो या ज्ञान हो, प्रवचन इत्यादि हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल एक गुरु निष्ठा ही एकमात्र चीज़ है जिसके माध्यम से भगवान हमको व्रज भक्ति या अपना प्रेम प्रदान कर सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो अभी समय हो गया है। श्रीला भक्ति सांसद सिंह महाराज के बारे में कई सारे उनकी जीवनी है, ये रे ऑफ विष्णु है, वो तो छोटी सी पुस्तक है, और भक्ति सिद्धांत वैभव ये पुस्तक शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज ने इसका संकलन किया है। तो आज के दिन हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि उनका जो मूड था वो विशेष मूड था कि हमको ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है इसको आगे बढ़ाना है और ये ज्ञान सब तक पहुँचाना है। प्राण आछे यार ये हेतु प्रचार, तो प्रचार के ऊपर बहुत बल था, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उस मूड को धारण करके पूरे विश्व भर में प्रचार किया। और 1935 में जब श्रीला प्रभुपाद जी श्रीला भक्ति सांसद सिंह महाराज से मिले राधा कुंड के तट पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत चिंता है क्योंकि मठ में अभी बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, मेरी इच्छा है कि अगर सारा जो मंदिर से मार्बल निकाल करके मैं पुस्तक छापूँ और उनका बड़ी मात्रा में वितरण करूँ। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, अगर आपको कभी भी धन की प्राप्ति हो तो आप पुस्तक छापिए और उनको वितरण कीजिए। तो इस आदेश को, ये राधा कुंड पर श्रील प्रभुपाद जी को आदेश मिला। तो गौड़िया वैष्णव के लिए राधा कुंड का अर्थ है गुरु की सेवा में पूरी तरह संलग्न हो जाना। स्पेशली इस्कॉन के भक्तों के लिए राधा कुंड का अर्थ है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को बांटना। राधा कुंड के तट पर ये नहीं कहा कि आप राधा कुंड में आकर के वास कीजिए या भजन कीजिए। तो निर्जन भजन के बहुत विरोध करते थे श्रील भक्ति सरस्वती महाराज, दुष्ट मना तुम्हें किसे वैष्णव। प्रभुपाद जी भी इसको बहुत कोट करते थे कि केवल अपने भजन में रुचि लेना और प्रचार कार्य नहीं करना, ये गौड़िया परंपरा का सार नहीं है। तो और 1936 में 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जब वे जगन्नाथपुरी में थे, और 13 दिसंबर को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनका पत्र का उत्तर दिया। 13 दिसंबर 1936, मतलब वे 1 जनवरी 1937 को उनका तिरुभाव हुआ, उससे केवल 3 हफ्ते पहले लगभग। और उस पत्र में उन्होंने उसी आदेश को दोहराया जो उन्होंने 1922 में दिया था, और उसमें लिखा कि मेरा अनुमान है कि आप अगर अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करेंगे गौड़िया तत्व का, तो आप बहुत ही सफल होंगे और इससे आपका और विश्व का दोनों का पूरी तरह से भला हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये वही आदेश था जो सबसे पहले मुझे दिया था। तो ये आदेश प्रभुपाद जी को अंतिम आदेश थे जो प्राप्त हुए थे पत्र के माध्यम से, और उसको लेकर के प्रभुपाद जी ने उनको अपने हृदय में रखा और बाद में उस आदेश के अनुसार इस्कॉन की संस्थापना की, पुस्तकों को छापने के लिए और बांटने के लिए भक्तिवंत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। और जो भाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रखते थे प्रचार के प्रति और हरिनाम संकीर्तन के प्रति, वही भाव श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित किया और अपने गुरु की कृपा से इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व भर में की। तो आज हम जो भी देखते हैं, वास्तव में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो विषय है बहुत ही गहरा है और बहुत विस्तृत है। तो मैं पिछले बार वाड़ा में था इस समय पर, तो सुबह क्लास हुआ 3 घंटे का, उसके बाद आधे घंटे भजन हुआ और फिर 1.5 घंटे क्लास हुआ, तो करीब 5-6 घंटे केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर ही प्रवचन हुआ, क्योंकि उसके कई सारे पहलू है, कई सारे चीज़ें हैं। तो हम व्यक्तिगत रूप से कम इस पर और पढ़ सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं या उनके ऊपर लेक्चर सुन सकते हैं या मनन कर सकते हैं या भक्तों में चर्चा कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनका पूरा मनोभाव को पूरी तरह ग्रहण किया है और उस मनोभाव को स्थापना करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की है। तो आज हम जो भी इस्कॉन में पाते हैं, जो भी हमें सुविधा मिली है भक्ति करने के लिए, उसका जो मूल कारण है वो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का विचारधारा है। उसी विचारधारा को शिल प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया। तो अभी हम यहाँ पर विराम देंगे, उसके बाद फिर 11 बजे से भजन कीर्तन इत्यादि करेंगे और फिर पुष्पांजलि और आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज त्रोभा महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंद।